پہلا سلاطین آٹھواں باب۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئیں۔ سو اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ ایتانائم میں جو ساتواں مہینہ ہے سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کاہنوں نے صندوق اٹھایا اور وہ خداوند کے صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور ان سب مقدس ظروف کو جو خیمہ کے اندر تھے لے آئے۔ ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے اور سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس جمع تھی صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے کہ ان کی کثرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا، اور کاہن خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کی الہام گھا میں یعنی پاک ترین مکان میں عین کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لے آئے، کیونکہ کروبی اپنے بازوؤں کو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے اور وہ کروبی صندوق کو اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے، اور وہ آج تک وہی ہیں۔ اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے جن کو وہاں موسیٰ نے ہورب میں رکھ دیا تھا جس وقت کے خداوند نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے عہد باندھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا، سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا۔ تب سلیمان نے کہا کہ خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا، میں نے فی الحقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی، اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے تاکہ میرا نام وہاں ہو، پر میں نے داؤد کو چن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو، اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے، لیکن خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے अपनी बात जो उसने कही थी कायम की है, क्योंकि मैं अपने बाप दाऊद की जगह उठा हूं और जैसा खुदा ने वादा किया था, मैं इसराइल के तख्त पर बैठा हूं और मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए उस घर को बनाया है और मैंने वहां एक जगह उस संदूक के लिए मुकरर कर दी है, जिसमें खुदावंद का वो अहद है जो उसने हमारे बाप दादा से जब वो उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाया बांधा था। और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमायत के रूबरू खुदावंद के मजबा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ए खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे जमीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह रखता है, तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के हक में वो बात कायम रखी जिसका तूने उससे वादा किया था। तूने अपने मुंह से फरमाया और अपने हाथ से उसे पूरा किया, जैसा आज के दिन है। सो अब ए खुदावंद इसराइल के खुदा, तू अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के साथ उस कौल को भी पूरा कर जो तूने उससे किया था, कि तेरे आदमियों से मेरे हजूर इसराइल के तख्त पर बैठने वाले की कमी ना होगी, बशर्ते तेरी औलाद जैसे तू मेरे हजूर चलता रहा वैसे ही मेरे हजूर चलने के लिए अपनी राह की एहतियात रखे। सो अब ए इसराइल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए जो तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद से किया। लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सकूनत करेगा? देख, आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया, तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, अपने बंदा की दुआ और मुनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मुकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा, और तू अपने बंदा और अपनी कौम इसराइल की मुनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुख करके करें सुन लेना। बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर मुआफ कर देना। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हलफ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मजबा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करना और बदकार पर फतवा लगाकर उसके अमाल को उसी के सिर डालना और सादिक को रास्त ठहराकर उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जजा देना। जब तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तुझसे दुआ और मुनाजात करे, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल का गुनाह मुआफ करना और उनको इस मुल्क में जो तूने उनके बाप दादा को दिया फिर ले आना। जब इस सबब से कि उन्होंने तेरा गुनाह किया हो, आसमान बंद हो जाए और बारिश ना हो, और वो इस मुकाम की तरफ रुख करके दुआ करें और तेरे नाम का इकरार करें और अपने गुनाह से बाज आएं, जब तू उनको दुख दे तो तू आसमान पर से सुनकर अपने बंदों और अपनी कौम इसराइल का गुनाह मुआफ कर देना, क्योंकि तू उनको उस अच्छी राह की तालीम देता है जिस पर उनको चलना फर्ज है, और अपने मुल्क पर जिसे तूने अपनी कौम को मेरास के लिए दिया है मी बरसाना। अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बादे सोमोम या गोराई या टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला, कैसा ही रोग हो, तो जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुनकर मुआफ कर देना, और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसकी सारी रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फक्त तू ही सब बनी आदम के दिलों को जानता है, ताकि जितनी मुद्दत तक वो उस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहें तेरा खौफ माने। अब रहा वो परदेसी जो तेरी कौम इसराइल में से नहीं है, वो जब दूर मुल्क से तेरे नाम की खातिर आए, क्योंकि वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और बुलंद बाजू का हाल सुनेंगे। सो जब वो आए और इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना, और जिस जिस बात के लिए वो परदेसी तुझसे फरियाद करे तू उसके मुताबिक करना, ताकि जमीन की सब कौमें तेरे नाम को पहचाने और तेरी कौम इसराइल की तरह तेरा खौफ माने, और जान लें कि ये घर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम का कहलाता है। अगर तेरे लोग खा किसी रास्ता से तू उनको भेजे अपने दुश्मन से लड़ने को निकलें, और वो खुदावंद से उस शहर की तरफ जिसे तूने चुना है और उस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके दुआ करें, तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना अगर वो तेरा गुनाह करें, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो, और तू उनसे नाराज होकर उनको दुश्मन के हवाले कर दे, ऐसा कि वो दुश्मन उनको असीर करके अपने मुल्क में ले जाए, खा वो दूर हो या नजदीक, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए होश में आए और रजू लाएं, और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझसे मुनाजात करें और कहें कि हमने गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले और हमने शरारत की, सो अगर वो अपने दुश्मनों के मुल्क में जो उनको असीर करके ले गए अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें, और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादा को दिया, और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुन लिया, और इस घर की तरफ जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके तुझसे दुआ करें, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात को सुनकर उनकी हमायत करना। और अपनी कौम को, जिसने तेरा गुनाह किया और उनकी सब खताओं को जो उनसे तेरे खिलाफ सरजद हों, मुआफ कर देना, और उनके असीर करने वालों के आगे उन पर रहम करना, ताकि वो उन पर रहम करें, क्योंकि वो तेरी कौम और तेरी मेरास हैं, जिसे तू मिस्र से लोहे के भट्टे के बीच में से निकाल लाया। सो तेरी आंखें तेरे बंदा की मुनाजात और तेरी कौम इसराइल की मुनाजात की तरफ खुली रहें, ताकि जब कभी वो तुझसे फरियाद करें, तू उनकी सुने, क्योंकि तूने जमीन की सब कौमों में से उनको अलग किया कि वो तेरी मेरास हों, जैसा ए मालिके खुदावंद तूने अपने बंदा मूसा की मार्फत फरमाया, जिस वक्त तू हमारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद से ये सब मुनाजात कर चुका, तो वो खुदावंद के मजबा के सामने से, जहां वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था, उठा और खड़े होकर इसराइल की सारी जमायत को बुलंद आवाज से बरकत दी और कहा, खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इसराइल को आराम बख्शा, मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मारिफत किया, उसमें से एक बात भी खाली ना गई। खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ रहे, जैसे वो हमारे बाप दादा के साथ रहा, और ना हमको तर्क करके ना छोड़े, ताकि वो हमारे दिलों को अपनी तरफ मायल करे कि हम उसकी सब राहों पर चलें और उसके फरमानों और आइन और अहकाम को जो उसने हमारे बाप दादा को दिए माने। और ये मेरी बातें जिनको मैंने खुदावंद के हजूर मुनाजात में पेश किया है, दिन और रात खुदावंद हमारे खुदा के नजदीक रहें, ताकि वो अपने बंदा की दाद और अपनी कौम इसराइल की दाद हर रोज की जरूरत के मुताबिक दे, जिससे जमीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई नहीं। सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदावंद हमारे खुदा के साथ उसके आइन पर चलने और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल रहे। और बादशाह ने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद के हजूर कुर्बानी गुजरानी, और सुलेमान ने जो सलामती के जबीहों की कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, उसमें उसने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ें चढ़ाई। यूं बादशाह ने और सब बनी इसराइल ने खुदावंद का घर मखसूस किया। उसी दिन बादशाह ने सहन के दरमियानी हिस्सा को, जो खुदावंद के घर के सामने था, मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वहीं सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और सलामती के जबीहों की चर्बी गुजरानी। इसलिए कि पीतल का मजबा जो खुदावंद के सामने था इतना छोटा था कि उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और सलामती के जबीहों की चर्बी के लिए गुंजाइश ना थी। सो सुलेमान ने और उसके साथ सारे इसराइल यानी एक बड़ी जमायत ने, जो हमात के मदखल से लेकर मिस्र की नहर तक की हदूद से आई थी, खुदावंद हमारे खुदा के हजूर 7 रोज और फिर 7 रोज और यानी 14 रोज ईद मनाई, और 8वें रोज उसने उन लोगों को रुखसत कर दिया। सो उन्होंने बादशाह को मुबारकबाद दी, और उस सारी नेकी के बायस जो खुदावन ने अपने बंदा दाऊद और अपनी कौम इसराइल से की थी, अपने डेरों को दिल में खुशी और मसरूर होकर लौट गए।